नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबी और बीमारी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संभव। प्रधानमंत्री आज सुबह कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में हिस्सा लेंगे। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अभी तक उपयोग में न लाई गई क्षमताओं का पता लगाने में युवा उद्यमियों को आमंत्रित किया। मालदीव में संसद के आज के असाधारण सत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के 12 सांसदों को बहाल करने के अपने पहले के आदेश पर रोक लगाई। सऊदी अरब ने पुरुष संबंधियों की मंजूरी के बिना महिलाओं को कारोबार शुरू करने की अनुमति दी। और जोहानिसबर्ग में भारत ने पहले 2020 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 28 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबी और बीमारी उन्मूलन में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार गरीबों और वंचित वर्गों को समृद्ध बना सकती है। मुंबई में कल वाधवानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही।
Technology opens an entirely new sphere and sector for growth. It also opens an entirely new paradigm of opportunities. With each wave of new technology, many new opportunities arise. New opportunities have always outnumbered the lost ones. Human ingenuity has always prevailed and it will continue to do so in the future.
प्रधानमंत्री ने कहा कि निसंदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंटेलिजेंस एजेंट बॉट और रोबोट के उपयोग से उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन मस्तिष्क और मशीन के बीच स्पर्धा होने के कारण इससे बेकारी बढ़ने की भी आशंका है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति मनुष्य के इरादों पर निर्भर करती है और उसी से संचालित होती है। श्री मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की बुनियाद सबका साथ सबका विकास के नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।
दिस हैज गिवन ह्यूमन इंक्रीजिंगली मोर पावर एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट इन वॉट एवर ही डज थ्रू टेक्नोलॉजी। इट इज दिस एथिक ऑफ डेवलपमेंट दैट विल एंश्योर इक्विटी फॉर ऑल पीपल। द मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ फर्दर इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी over access to technology. The evolution of technology has to be rooted in the ethic of sabka saath sabka vikas.
प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के श्रवणबेलगोला और मैसूरु में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री बाहुबली की 58.8 फुट ऊंची प्रतिमा के दर्शन के लिए विंध्यगिरी पहाड़ियों पर बनाए गए 630 सीढ़ियों वाले नए मार्ग का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरू में मैसूरू और उदयपुर के बीच चलने वाली पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री मैसूरू बेंगलुरु राजमार्ग को 8 लेन का बनाए जाने की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। शाम को प्रधानमंत्री मैसूरू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार में तेजी आ गई है। प्रचार के लिए अब एक हफ्ते का समय बचा है। दोनों राज्यों में इस महीने की 27 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 मार्च को होगी। 59 सदस्यों की नागालैंड विधानसभा के लिए 195 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीपीपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नेफ्यू रियो उत्तरी अंगामी द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र से पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मेघालय में विलियम नगर विधानसभा सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जोनाथन संगमा की कल शाम संदिग्ध उग्रवादियों ने आईईडी विस्फोट से हत्या कर दी। निर्वाचन आयोग इस सीट के लिए चुनाव स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा आज जारी करेगा। सरकार ने देशभर के युवा स्टार्टअप को पूर्वोत्तर में अब तक उपयोग में न लाई गई क्षमताओं के जरिए किस्मत आजमाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल स्किल इंडिया प्रदर्शनी में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर में युवाओं को उद्यम पूंजी उपलब्ध कराने के अपने मंत्रालय के फैसले की जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा कि ये स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया के तहत पहले से उपलब्ध कराई जा रही सहायता के अलावा होगी। उन्होंने कहा कि उद्यम पूंजी के 65 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। मालदीव में सुप्रीम कोर्ट ने 12 सांसदों की सदस्यता बहाल करने के 1 फरवरी के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कल शाम नया आदेश जारी किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि देश में आपात स्थिति पर चर्चा के लिए आज संसद का असाधारण सत्र बुलाया गया है।
मालदीव में संसद का अधिवेशन कई महीनों के बाद बुलाया गया है और इसकी कार्रवाई पर सबकी नजर होगी। उच्चतम न्यायालय के कल के निर्णय के बाद राष्ट्रपति यामिन की पार्टी बहुमत में होगी और उन्हें आपातकाल को अनुमोदित कराने या उसकी अवधि बढ़ाने के निर्णय में कोई दिक्कत नहीं होगी। संसद का सत्र इस महीने की 5 तारीख को भी प्रस्तावित था, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण उसे रद्द करना पड़ा और उसी दिन आपातकाल की घोषणा हुई। संसद अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी कई महीनों से लंबित है और सरकार ने उस पर वोटिंग नहीं होने दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलम्बो से संतोष कुमार।
सऊदी अरब में अब महिलाएं अपने पति या किसी पुरुष रिश्तेदार की सहमति के बिना भी कारोबार शुरू कर सकती हैं। सऊदी सरकार ने बृहस्पतिवार को ये नीतिगत बदलाव करने की घोषणा की। इसे देश में दशकों से चले आ रहे पुरुष आधिपत्य से हटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले सऊदी अरब में महिलाओं को कोई भी सरकारी कागजात संबंधी कार्य, यात्रा या किसी कक्षा में प्रवेश के लिए सामान्य तौर पर पति, पिता या भाई की अनुमति का सबूत देना पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने युवा आदान प्रदान कार्यक्रम वतन को जानो के तहत कल जम्मू कश्मीर के युवाओं से मुलाकात की। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में करीब 200 युवक 11 से 20 फरवरी के दौरान देश के विभिन्न भागों की यात्रा पर हैं। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने अनुभव सुनाएं और एकता का संदेश दें।
कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, अब यह समाप्त होना चाहिए। इसलिए अपने दोस्तों से भी जाकर कहना बातचीत करते हुए, कश्मीर स्वर्ग है तो वहां पर फिर खून खराबा सब नहीं होना चाहिए। जैसे सारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे हमारे जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को देखने अस्पताल गए। श्री पर्रिकर पैनक्रियाज से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे। संक्रमित भोजन से बीमार होने के बाद श्री पर्रिकर को पिछले बृहस्पतिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि श्री पर्रिकर के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज एक दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। वे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। बाद में श्री ट्रूडो भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में एक व्याख्यान देंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मुंबई रवाना होने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बैठक भी करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की 1 सप्ताह की यात्रा पर हैं। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 4 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। इनका निर्माण उड़ान योजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कल रायपुर में एक समारोह में कहा कि ये हवाई अड्डे अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर और रायगढ़ में बनाए जा रहे हैं। भारत ने 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 28 रन से हरा दिया। कल रात जोहानिसबर्ग में भारत के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 175 रन ही बना पाई। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट लिए। शिखर धवन ने 39 गेंदों पर 72 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा।
धन्यवाद विमलेंदु। बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी खबरों को अखबारों ने अहमियत दी है। अंग्रेजी दैनिक द हिंदू और पायनियर की खबर है, नीरव मोदी के बाद रोटोमैक पेन का प्रमोटर विक्रम कोठारी 800 करोड़ रुपए लेकर चंपत। बैंक घोटालों पर नवभारत टाइम्स का विश्लेषण है, रुपए और रूप के जाल में फंसा कर की गड़बड़ी। पीएनबी घोटाले के बाद हरकत में आई सरकारी एजेंसियों पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की नजर बेनामी संपत्ति और कंपनियों पर। जनसत्ता का कहना है फर्जी कंपनियों के जरिए विदेश भेजे पैसे। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं बेईमान अफसरों ने नीरव मोदी को सौंप दिए थे बैंक के अति गोपनीय पासवर्ड जिससे बैंक की वैश्विक मैसेजिंग स्विफ्ट प्रणाली में कारोबारियों ने लगाई सेंध। उधर अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस विडंबना शीर्षक से लिखता है कि पंजाब नेशनल बैंक ने 3 साल हासिल किया है बैंकिंग सतर्कता पुरस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यालय पर नव भारत टाइम्स का शीर्षक है गाड़ी का नंबर पढ़कर कैमरे खोल देंगे गेट, ऐसा है बीजेपी का हेडक्वार्टर। हिन्दुस्तान की खबर है स्टील बुलेट से जवानों को बचाएगा भाभा कवच। जैकेट को भेदने वाली चीन में निर्मित खास स्टील की गोली से रक्षा करेगा ये कवच, कश्मीरी आतंकवादी करते थे इसका इस्तेमाल। दैनिक जागरण की अहम खबर है अफसरों की मिलीभगत से जम्मू में पैर पसार रहे हैं रोहिंग्या। राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाकर सरकारी सुविधाओं का उठा रहे लाभ। विस्फोटक स्थिति शीर्षक से पंजाब केसरी का कहना है जनसंख्या नियंत्रण की मांग हुई तेज, सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबी और बीमारी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आज सुबह कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में हिस्सा लेंगे। मेघालय और नागालैंड विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अभी तक उपयोग में न लाई गई क्षमताओं का पता लगाने के लिए युवा उद्यमियों को आमंत्रित किया है। मालदीव में संसद के आज के असाधारण सत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के 12 सांसदों को बहाल करने के अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।